भारत के संविधान की संघात्मक विशेषताएं, फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यद्यपि भारत के संविधान में संघात्मक फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु फिर भी प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविक ने अपनी पुस्तक भारत का संविधानिक विकास में स्वीकार किया है, भारत निस्संदेह संघात्मक राज्य है जिसमें प्रभु सत्ता के तत्वों को केंद्र और राज्यों में बांटा हुआ है। इंडिया इज अनडाउटेडली ए फेडरेशन इन विच एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉवरेनिटी आर शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविक। पॉल एप्पलबाई के अनुसार भारत पूर्ण रूप में संघात्मक राज्य है। इंडिया इज कम्प्लीटली ए फेडरल स्टेट, पॉल एप्पलबाई। भारत के संविधान में निम्नलिखित संघीय विशेषताएं पाई जाती हैं। एक, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों में समझौता होता है और समझौते की शर्तों का लिखित होना आवश्यक होता है ताकि अनिश्चितता को समाप्त किया जा सके। भारत का संविधान लिखित है जिसकी 395 धाराएं और 12 अनुसूचियां हैं तथा लगभग 90,000 शब्दों का प्रयोग किया गया था। यद्यपि भारत के संविधान में समय समय पर किए गए संशोधनों के परिणाम स्वरूप संविधान से अनेक धाराएं निकाल दी गई हैं और अनेक धाराएं संविधान में जोड़ी गई हैं, परंतु संविधान में शामिल धाराओं के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक छोटी छोटी बात को लिखित रूप दिया है ताकि केंद्र और राज्यों में विवादों की कम से कम संभावना रहे। दो, कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान कठोर भी है। संविधान में संशोधन करने के लिए धारा 368 में दो विधियों का वर्णन है। पहली विधि के अनुसार संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरी विधि के अनुसार संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाने के बाद कम से कम 1/2 राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक है। इस दूसरी विधि के अनुसार वे धाराएं संशोधित की जाती हैं। पेज 43, जिनका प्रभाव राज्यों की शक्तियों पर भी पड़ता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, संघीय और राज्य सरकारों की वैधानिक कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां, राज्यों का संसद में धारा 368 में संशोधन इत्यादि। तीन, संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और कई व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा संविधान के विरुद्ध किया गया कोई कार्य, संघीय संसद और विधान मंडलों द्वारा पास किया गया कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध होगा असंवैधानिक होगा। सभी उच्चाधिकारी अपने उत्तरदायित्व को संविधान के अनुसार निभाने की शपथ लेते हैं। चार, विषयों का विभाजन, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। संघात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय महत्व वाले विषय केंद्रीय सरकार के पास, स्थानीय महत्व वाले विषय राज्य सरकारों के पास, संयुक्त महत्व वाले विषय संयुक्त सूची में रख लिए जाते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल के अनुसार विषयों को निम्नलिखित 3 सूचियों में बांटा गया है। क, संघीय सूची, यूनियन लिस्ट। संघीय सूची में 97 विषय सम्मिलित किए गए थे, परंतु 42वें संशोधन के पश्चात इन विषयों की संख्या 98 हो गई है और वे हैं विदेशी मामले, युद्ध, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, नागरिकता, रेलवे, डाक, तार, सिक्का, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की रचना, रिजर्व बैंक, जीवन बीमा इत्यादि। ख, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची में 67 विषय सम्मिलित किए गए थे, परंतु 42वें संशोधन के पश्चात इन विषयों की संख्या कम होकर 62 रह गई है और वे हैं पुलिस, जेलें, न्याय व्यवस्था, निम्न अदालतें, स्थानीय सरकारें, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, खेतीबाड़ी और सिंचाई इत्यादि। 1976 में किए गए 42वें संशोधन के अनुसार शिक्षा, नापतोल, जंगली जानवरों की रक्षा को राज्य सूची में से निकालकर समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। ग, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित हैं, परंतु 42वें संशोधन के पश्चात इन विषयों की संख्या 52 हो गई है और वे हैं दंड विधि, विवाह और तलाक, मजदूर संघ, दिवालियापन, समाचार पत्र, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सामग्री में मिलावट, मूल्यों पर नियंत्रण, उत्तराधिकार, सक्सेशन, निवारक नजरबंदी इत्यादि। समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। 5, दोहरी शासन व्यवस्था, ड्यूल पॉलिटी। संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। संघीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और भारत के संविधान के अनुसार भारत में दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान की धारा 1, आर्टिकल 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित किया गया है और इस समय भारत में 29 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र हैं। सारे भारत की एक संघीय सरकार यूनियन गवर्नमेंट है और राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें हैं जो उन्हें संविधान द्वारा सौंपी शक्तियों का प्रयोग करती हैं। संघीय संसद विभिन्न राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों के नाम बदल सकती है, परंतु राज्यों को भंग करके भारत के एकात्मक राज्य में नहीं बदल सकती। 6, द्विसदनीय विधानमंडल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। संघात्मक प्रणाली में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था होती है, जिसके निम्न सदन में लोगों को और ऊपरी सदन में संघीय इकाइयों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार संघीय संसद के 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, जिसके सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। निम्न सदन को लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, जिसके सदस्य लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं। 7, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान की रक्षा और व्याख्या के लिए तथा केंद्र और राज्यों में पैदा होने वाले झगड़ों को निपटाने के लिए न्यायपालिका को उच्च स्तर दिया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो संविधान के संरक्षक और व्याख्याकार। पेज 44, गार्डियन एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका निभाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय संघीय सरकार और राज्य सरकारों का कोई भी कार्य जो संविधान से मेल नहीं खाता को असंवैधानिक करार दे सकता है। 8, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। संघात्मक प्रणाली की सरकार में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, क्योंकि न्यायपालिका द्वारा संविधान की रक्षा और व्याख्या करनी होती है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका द्वारा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन स्थापित करने का काम भी करना होता है, और ये सब तभी संभव हो पाएगा यदि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधान पालिका के प्रभाव से मुक्त होगी। इस उद्देश्य को मुख्य रखते हुए भारत के संविधान के अनुसार वे सभी व्यवस्थाएं की गई हैं जो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए जाने के लिए आवश्यक हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और उनको पद से हटाए जाने के लिए कठिन विधि अपनाई गई है। उनका लंबा कार्यकाल निश्चित किया गया है और उनके लिए उच्च वेतन और सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च पेंशनों की व्यवस्था भी की गई है आदि। भारत के संविधान की ऊपर लिखित विशेषताओं को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक प्रणाली की सरकार है। यद्यपि भारत के संविधान में कहीं भी संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।